सिद्धांत किसे कहते हैं, इसके लिए लक्षण बताया। प्रामाणिकत्वेन अभ्युपगतः अर्थः सिद्धांतः, प्रमाणों के द्वारा सिद्ध जो स्वीकृत अर्थ होता है उसे हम सिद्धांत कहते हैं। सच चतुर्धा, और यह जो सिद्धांत है यह चार प्रकार का होता है। कौन कौन? तो सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। ये चार प्रकार के सिद्धांत के भेद हैं। उन चारों में से तत्र सर्वतंत्र तंत्र सिद्धांतो यथा, सर्वतंत्र सिद्धांत क्या होता है कि समान जितने भी ये शास्त्र हैं सभी शास्त्रों में जिस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है, सारे शास्त्र जिस सिद्धांत को मानते हैं उसको हम सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। यथा धर्मी मात्र सद्भाव, धर्मी धर्मी हो गया पदार्थ, तो पदार्थ मात्र का सद्भाव जो है, अस्तित्व जो है, पदार्थ का अस्तित्व होता है इस बात को सभी शास्त्र वाले मानते हैं, तो सभी शास्त्र वाले जिस सिद्धांत को मान लें उस सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत कहा जाता है। यथा धर्म मात्र सद्भाव कि धर्मिण सद्भावो भवति, यह जो सिद्धांत है उसको सब लोग मानते हैं। द्वितीय यथा, द्वितीय सिद्धांत है कौन? प्रतितंत्र सिद्धांत। ये प्रतितंत्र सिद्धांत क्या होता है? कहते हैं कि द्वितीय यथा नैयायिकस्य मते मनसा इंद्रियत्वम्। प्रतितंत्र सिद्धांत वो है, शास्त्र भी जो है ना दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समान मान्यता वाले वाला शास्त्र, आ एक होता है ना बहुत ही अंतर होता है, भिन्नता होती है इस तरह का शास्त्र। तो समान इसको ना समानता पर आधारित जो शास्त्रांतर होता है उसको समान तंत्र कहा जाता है, और विषमता पर आधारित जो शास्त्रांतर होता है उसको असमान तंत्र कहते हैं। तो समान तंत्र वाला जो शास्त्र है उसमें जो सिद्धांत होता है ना, जैसे न्याय दर्शन का कोई सिद्धांत हो उसको वैशेषिक दर्शन भी उस सिद्धांत को स्वीकार करता हो, ऐसा सिद्धांत जो है प्रतितंत्र सिद्धांत कहलाता है। आपको मैंने बताया था पहले कि ये सांख्य योग, न्याय वैशेषिक और मीमांसा वेदांत। तो सांख्य योग को समान तंत्र शास्त्र कहा जाता है और न्याय वैशेषिक को समान तंत्र कहा जाता है और मीमांसा वेदांत को समान तंत्र कहा जाता है, क्योंकि इनमें बहुत सारी जो है समानताएं पाई जाती हैं। तो समान तंत्र शास्त्र में अर्थात समान शास्त्रांतर में जो सिद्धांत स्वीकृत हो उसको हम प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। यथा नैयायिकस्य मते मनसः इंद्रियत्वम्, मनस का इंद्रियत्व जो है न्याय सम्मत है, सब शास्त्र वाले मन को इंद्रिय नहीं मानते हैं, और यह जो सिद्धांत है मन का इंद्रियत्व सिद्धांत, ये कौन सा सिद्धांत आएगा? प्रतितंत्र सिद्धांत में आएगा। क्यों? कि ये जो समान तंत्र जो वैशेषिक दर्शन है उसमें भी यह बात, इस बात को स्वीकार किया गया है। तीसरा जो सिद्धांत होता है वह अधिकरण सिद्धांत होता है। अधिकरण सिद्धांत असल में इन्होंने लक्षण नहीं बताया है इन सबों का, केवल उदाहरण ही दे दिया है, तो हमें लक्षण अपनी ओर से ही इसलिए करना पड़ रहा है। तो तीसरा सिद्धांत जो है अधिकरण सिद्धांत, इसके लिए ये है कि यत सिद्धो अन्यत प्रकरण सिद्धि सह अधिकरण सिद्धांत, जिसकी सिद्धि होने से किसी अन्य प्रकरण की सिद्धि होती है उसको हम अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। इसको उदाहरण के द्वारा ये समझें कि ईश्वर की सिद्धि जो है नैयायिक लोग करते हैं अनुमान के द्वारा, वो कहते हैं कि चित्यंकुरादिकम सकर्तिकम कार्यत्वात् घटवत्, चित्यंकुरादिकम सकर्तिकम कार्यत्वात् घटवत्। यहाँ पर चित्यंकुरादिकम, चिति माने पृथ्वी, अंकुर आप समझते हैं बीज, तो चिति अंकुर आदि जो है ये सकर्तृक होता है, माने कर्ता ही कोई न कोई कर्ता होता है जो चिति को भी बनाता है, अंकुर को भी बनाता है। तो इस तरह से चिति अंकुरादिकम सकर्तृकम, ये सकर्तृक होते हैं कार्यत्वात्, क्योंकि ये कार्य हैं और कार्य बिना कर्ता का होता नहीं है। फिर उदाहरण देते हैं कि घटवत्, जैसे घट जो है वह कार्य है और उसका कर्ता कुम्हार होता है, तो उसी तरह से क्षिति आदि जो है ये भी कार्य है, इसका भी जो है ना कोई कर्ता अवश्य होता है। इस तरह से कर्ता की सिद्धि करता है कौन? न्यायिक। और वह कर्ता जो है वह कौन होगा? तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कौन होगा? तो ईश्वर ही होगा। क्यों ईश्वर होगा? तो जो सर्वज्ञ होगा वही जो है क्षिति आदि का जो है कर्ता हो सकता है। क्योंकि मुझे अगर मान लीजिए घड़ी मैं बनाता हूँ तो घड़ी के सारे पार्ट की जानकारी होगी, घड़ी की पूरी जानकारी होगी, तभी मैं घड़ी को बना पाऊंगा ना। तो क्षिति आदि का जो कर्ता होगा उसको क्षिति आदि का ज्ञान सबका होना चाहिए ना। तो युवा क्षिति आदि का कर्ता कौन हो सकता है? जो सर्वज्ञ होगा उसी को जो है ना क्षिति आदि का कर्ता माना जा सकता है। तो यह जो है सिद्धांत ये अधिकरण सिद्धांत होता है, कहलाता है। क्योंकि सर्वज्ञत्व के बिना ये क्षिति अंकुर आदि का कर्तृत्व का साधन जो है संभव नहीं है। तो जगतकर्ता के साधना क्षिति अंकुर आदि के कर्ता के साधन के लिए जो प्रयुक्त अनुमान प्रमाण होता है उस अनुमान प्रमाण से जगतकर्ता का सर्वज्ञत्व भी सिद्ध हो जाता है। ऐसा है कि न्यायिक लोग अनुमान के द्वारा न क्षिति अंकुर आदि कर्ता की सिद्धि करते हैं, लेकिन इस सिद्धि से कर्ता के सर्वज्ञत्व की भी सिद्धि हो जाती है। क्योंकि बिना सर्वज्ञत्व के कोई क्षिति अंकुर आदि का कर्ता हो नहीं सकता है। तो अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया किसकी सिद्धि के लिए? कर्ता की सिद्धि के लिए। और कर्ता की सिद्धि से ही जो है ना कर्ता की सर्वज्ञत्व की जो भी जो सिद्धि हो जाती है, ये जो सर्वज्ञत्व सिद्धि है इसी का नाम है अधिकरण सिद्धांत। क्योंकि यत सिद्धो अन्यत प्रकरण सिद्धि, यत सिद्धो माने कर्तृत्व सिद्धो, क्षित्यंकुरादि कर्तृत्व सिद्धो अन्यत प्रकरण सिद्धि। अन्यत से यहाँ सर्वज्ञत्व ले लीजिए, सर्वज्ञत्व से सिद्धि भवति, तस्मात् यम या सिद्धि सर्वज्ञत्व सिद्धि सा सिद्धि अधिकरण सिद्धांत। अब इस तरह से चौथा जो सिद्धांत है वो है अभ्युपगम सिद्धांत। इसका अभी लक्षण इन्होंने नहीं बताया, मैं ही बता देता हूँ। अभ्युपगम सिद्धांत होता है कि मेरा अभिमत सिद्धांत ये है नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम विचार विमर्श करने के लिए इस सिद्धांत को मैं मान करके फिर विचार जो करूँगा, तो जो अनभिमत सिद्धांत होता है कुछ काल के लिए उस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है, ऐसा सिद्धांत अभ्युपगम सिद्धांत होता है। तो चतुर्थो यथा जैमिनीयस्य नित्यानित्यत्व विचारो यथा भवतु तावत् शब्दो गुणः। ये क्या है कि मीमांसक और न्यायिक में पारंपरिक शास्त्रार्थ चलता रहता है, बहुत जगह दोनों में डिफरेंस है। तो मान लीजिए कि जैमिनीय, जैमिनीय मतलब मीमांसक, जैमिनी दर्शन वाले जो हैं उनको जैमिनीय कहा जाता है। तो उनके साथ अगर शास्त्रार्थ न्यायिक का चल रहा है तो उस समय में जैमिनीय क्या कहेगा? मीमांसक कहेगा कि शब्द नित्य, शब्द जो है वह नित्य होता है। और न्यायी क्या कहेगा कि शब्द अनित्य, शब्द अनित्य होता है, अपनी अपनी बात करेगा। अब जब शास्त्रार्थ आगे बढ़ा तो न्यायिक अगर थोड़ी देर के लिए ये स्वीकार कर ले कि अच्छा चलिए मान लिया कि शब्द नित्य होता है, लेकिन फिर चलिए इसका जवाब दीजिए। इस तरह से जो है ना थोड़ी देर के लिए जो अनभिमत सिद्धांत को भी माना जाता है वही सिद्धांत कहलाता है अभ्युपगम सिद्धांत। वही यहाँ कहा चतुर्थो यथा जैमिनीयस्य नित्यत्व विचारो यथा भवत तावत् शब्दो गुणः। अच्छा इसी तरह से शब्द गुण है कि शब्द द्रव्य है, इस तरह का शास्त्रार्थ चला तो मीमांसक के अनुसार शब्द गुण है, नहीं उल्टा हो गया, मीमांसक के अनुसार शब्द द्रव्य होता है और न्यायिक के अनुसार शब्द गुण होता है। तो थोड़ी देर के लिए अगर न्यायिक कहे भवत तावत् शब्दो गुणः, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि शब्द जो है गुण होता है, इस तरह से जो अनभिमत को मानना है यही अभ्युपगम सिद्धांत कहलाता है। इस तरह से सिद्धांत तक ये जो 16 पदार्थ जो बताए गए प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत इस तरह से करके सिद्धांत, तो सिद्धांत तक बता करके फिर जो है ना वहाँ पर अब हेत्वाभास जो है उसकी बात होगी, अनुमान के जो वाक्य सब हैं पंचायव वाक्य उनकी बात होगी। ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं, मैंने पहले भी बताया था, उसका रिपीट होगा, थोड़ा सा वर्णन शैली में थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन वो लक्षण उदाहरण लगभग सबके सब जो हैं वो समान ही हैं। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि अनुमान वाक्य से एक देशाह अवयवाह, अनुमान के जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, तो अनुमान वाक्य का एक देश होता है, माने अनुमान वाक्य का जो एक एक देश मतलब एक हिस्सा, छोटा सा जो हिस्सा होता है उसी छोटे से हिस्से को हम अवयव कहते हैं। तेच प्रतिज्ञादयः पंच, वे जो अवयव हैं वो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इस तरह से पांच प्रकार के होते हैं, वही अनुमान के पांच अवयव कहलाते हैं। तथा च न्याय सूत्रम, न्याय दर्शन का सूत्र है गौतम का कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनानि अवयवाः, ये पांचों अनुमान के अवयव कहलाते हैं। अब सबका मतलब लक्षण कहेंगे, उदाहरण देंगे कि तत्र साध्य धर्म विशिष्ट पक्ष प्रतिपादकम वचनम प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं, तो साध्य धर्म से विशिष्ट माने युक्त जो पक्ष का प्रतिपादक वचन है उस वचन का नाम ही है प्रतिज्ञा। यथा पर्वतोयम वहिमान, ये जो है ये प्रतिज्ञा वाक्य कहलाता है। इसमें क्या है, तो पक्ष जो है पर्वत है, पर्वतोयम वहिमान में, और साध्य क्या है, तो वहनी संयोग, ये साध्य है माने वहिमत्व, ये क्या है साध्य है। तो पर्वत हो गया पक्ष और वहिमत्व हो गया साध्य। तो साध्य धर्म से विशिष्ट पक्ष कौन हुआ, यहाँ पर वहिमत्व से युक्त पर्वत जो है यही है साध्य धर्म विशिष्ट पक्ष, और इसका प्रतिपादक वचन है क्या, पर्वतोयम वहिमान, तो ये जो वचन है यही प्रतिज्ञा वाक्य है, यही प्रतिज्ञा अवयव है। तृतीयांतम पंचम्यंतम व लिंग प्रतिपादकम वचनम हेतु, हेतु किसको कहते हैं, तो हेतु जो होता है वो लिंग प्रतिपादक वचन होता है, माने हेतु के द्वारा लिंग का प्रतिपादन किया जाता है। लिंग मतलब जैसे वहिमान जो अनुमान होता है उसमें लिंग क्या होता है, धूमवान, तो धूम जो है वो लिंग होता है, तो उसी धूम के कारण ही वहनि का अनुमान किया जाता है। तो वहाँ लिंग का जो प्रतिपादक वचन है वह हेतु है, और उसका लक्षण इन्होंने बताया कि या तो वो तृतीयांत होता है या पंचम्यंत होता है, क्योंकि हेतु में व्याकरण की दृष्टि से तृतीया भी जायज है और पंचमी भी जायज है। आप धूमवत्वात भी कह सकते हैं हेतु में, आ धूमवत्वेन भी कह सकते हैं हेतु में, इसलिए कहा कि तृतीयांतम पंचम्यंतम वा लिंग प्रतिपादकम वचनम हेतु। तृतीयांत लिंग प्रतिपादक वचन अथवा पंचम्यंत लिंग प्रतिपादक वचन जो है वह हेतु है, यथा धूमवत्वेन धूमवत्वात इति वा, जैसे धूमवत्वेन कहें अथवा धूमवत्वात कहें, यह जो है यह हेतु वाक्य है। अब उदाहरण किसको कहते हैं, तो स्वव्याप्तिकम दृष्टांत वचनम उदाहरणम, क्या स्वव्याप्तिकम माने व्याप्ति से युक्त जो दृष्टांत का वचन होता है वह पूरा का पूरा उदाहरण कहलाता है। केवल महानस जो है उदाहरण नहीं कहलाएगा, जब उसमें व्याप्ति को दिखाते हुए दृष्टांत देंगे, महानस का नाम लेंगे, तभी वह उदाहरण कहलाएगा। याद रखिए व्याप्ति के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है, व्याप्ति का शाब्दिक अर्थ होता है साहचर्य, तो साहचर्य को बताते हुए, साहचर्य मतलब दो सहचरों में रहने वाला जो भाव है, सहचर माने एक साथ रहने वाले को सहचर कहते हैं, और दो सहचरों के भाव को साहचर्य कहा जाता है, उस साहचर्य का ही नाम है व्याप्ति। याद करिए यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, यह जो साहचर्य नियम है उसी को व्याप्ति कहते हैं। तो व्याप्ति को दिखाते हुए जो दृष्टांत का वचन होता है उस वचन को हम उदाहरण कहते हैं, यथा यो यो धूमवान सह सह अग्निमान यथा महानसम, जो जो धूमवान होता है वह अग्निमान होता है जैसे कि महानसम। ये जो वाक्य है पूरा, इसमें यो यो धूमवान सह अग्निमान ये व्याप्ति भी बताया गया है, और सव्याप्तिक दृष्टांत भी है महानसम, इसलिए ये उदाहरण कहलाएगा। फिर आगे कहते हैं उपनय किसको कहते हैं, तो पक्ष लिंगोपसंहार वचनम उपनय, पक्ष में जो लिंगोपसंहार वचन है उस लिंगोपसंहार वचन को उपनय कहा जाता है। ये लिंगोपसंहार वचन क्या हुआ, तो वचन मतलब प्रतिपादक वाक्य, किसका प्रतिपादक वाक्य, तो साध्य व्याप्य हेतु संबंध का जो प्रतिपादक वाक्य होता है, यहाँ लिंगोपसंहार का अर्थ होगा साध्य व्याप्य हेतु संबंध, लिंगोपसंहार का अर्थ करेंगे साध्य व्याप्य हेतु संबंध। व्याप्य माने जानते हैं आप, व्याप्ति से जो विशिष्ट होगा उसको हम व्याप्य कहेंगे। तो साध्य का व्याप्य जो हेतु है, उस हेतु के संबंध का जो प्रतिपादक वचन है उसी को कहेंगे लिंगोपसंहार वचनम, वही उपनय कहलाता। यथा वन्य व्याप्य धूमवांश अयम इति तथा चायम इति वा, इसको दोनों प्रकार से संक्षेप में कहते हैं उपनय वाक्य को, तो कहते हैं तथा चायम, और थोड़ा सा विस्तार से अगर कहते हैं तो कहते हैं बहनी व्याप्य धूम वांश अयम, माने बहनी से व्याप्य जो धूम है उस धूम से बान यह है, माने उस धूम से युक्त यह है, इस तरह का जो वाक्य कहा जाता है यह है उपनय वाक्य। इसमें आप देखिए साध्य क्या है, बहनी है, उसका व्याप्य क्या है, व्याप्य उस साध्य है बहनी, उसका व्याप्य हेतु कौन है, धूम है, इसलिए तो बहनी व्याप्य धूम और उसका संबंध बताता है तो धूमबान, तो बहनी व्याप्य धूमबान, ये जो है ये हो गया साध्य व्याप्य हेतु संबंध, इसका प्रतिपादक वाक्य हो गया बहनी व्याप्य धूमवांश चायम, ये वाक्य, इस वाक्य को हम उपनय कहते हैं, और इसको संक्षेप में तथा च अयम भी कहते हैं। अब निगमन को किसको कहते हैं, उसके लिए बताया पक्ष साध्य उपसंहार वचनम निगमनम, पक्ष में पर्वत आदि पक्ष में साध्य जो बहनी आदि है उसका जो उपसंहार वचन होता है उस उपसंहार वचन को हम निगमन कहते हैं। यथा जैसे तस्मात अग्निमान, तस्मात माने पक्ष में रहने वाले हेतु के कारण यह अग्निमान है, पक्ष जो पर्वत है उस पर्वत में हेतु वृत्ति है, माने धूम रूप हेतु वृत्ति है, इसीलिए अग्निमान पर्वत, इसलिए पर्वत जो है अग्निमान है, इस तरह से तस्माद अग्निमान इति ये कहा जाता है निगमन वाक्य में, अथवा तस्मात तथा ये कहा जाता है। यहाँ जो तस्मात अग्निमान कहें या तस्मात तथा कहें, यहाँ तस्मात का अर्थ करना है पक्ष वृत्ति हेतु हो, माने पक्ष में रहने वाले हेतु के कारण, ये अर्थ होता है तस्मात का। एते च प्रतिज्ञादयः, ये जो प्रतिज्ञादि पांच हैं ये पंच अनुमान वाक्यस्य अवयवा इव अवयवाः, ये जो प्रतिज्ञादि पांच अनुमान वाक्य के अवयव हैं ये वस्तुतः अनुमान वाक्य के अवयव नहीं है, ये अनुमान वाक्य के अवयव के सदृश अवयव है। ऐसा इसलिए कहा कि अनुमान वाक्य क्या है, शब्द है, और शब्द कहाँ रहता है, आकाश में रहता है, तो उसका जो है वह अवयव नहीं हो सकता, वह क्या होगा, अवयव के सदृश होगा, वही आगे कहते हैं। एते च प्रतिज्ञादयः पंच, ये जो प्रतिज्ञा आदि पांच हैं ये अनुमान वाक्यस्य अवयवा इव अवयवा, ये अनुमान वाक्य के अवयव की के अवयव की तरह हैं, माने ये अवयव नहीं है अनुमान वाक्य के, ये अवयव सदृश है। न तो समवायि कारणम शब्दस्य आकाश समवेतत्वात्, क्योंकि अगर इसको हम अवयव मान लेंगे प्रतिज्ञादि पांच अवयवों को, तो अवयव क्या होता है, अवयवी का समवायि कारण होता है, तो फिर इसको हम समवायि कारण मानना पड़ेगा, जबकि ऐसा है नहीं, शब्द का समवायि कारण क्या होता है, आकाश होता है, तो आकाश में ही जो है शब्द समवेत होता है, माने समवायि संबंध से स्थित होता है, तो वही कहा कि न तो समवायि कारणम शब्दस्य, ये जो शब्द का ये समवायि कारण नहीं है प्रतिज्ञादि अवयव, वह जो है समवायि कारण शब्द का, तो शब्द का समवायि कारण तो आकाश होता है, आकाश में ही जो है ना शब्द विद्यमान होता है, ये प्रतिज्ञादि अवयव में अनुमान वाक्य जो रूपी जो शब्द है वह विद्यमान नहीं होता है, इसीलिए अनुमान वाक्य का जो ये पांचों अवयव कहा जाता है ये अवयव सादृश्य के आधार पर कहा जाता है, वस्तुतः ये अनुमान वाक्य के अवयव नहीं होते हैं। इस तरह से इन्होंने ये जो अनुमान का जो पंचावयव वाक्य है उसको बताया।